मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 20 जुलाई 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं पंकज कुमार महतो, आपका गांव है परशर्मा, जिला दरभंगा बिहार, उमाकांत, आप आगरा उत्तर प्रदेश से हैं, दगेंद्र कुमार साहू, आप दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं, और आशीष कुमार तिवारी, आपका गांव है धधानी, जिला रीवा मध्य प्रदेश से हैं। तो पंकज, उमाकांत, दगेंद्र और आशीष, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुक्रवार का दिन है आज और आज मैं आप सबको नियमित तौर पर कुछ सूचनाएं देता हूं। और सूचनाएं यह हैं कि कल और परसों यानी कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है। खासकर हम लोग जो गजटेड हॉलीडे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन कल यानी कि शनिवार को आपको अखबारों की कतरने पहले की तरह ही मिलती रहेंगी और इसके साथ ही कुछ आपको एडिशनल मटेरियल भी पढ़ने के लिए मिलेगा। और उसके तहत आपको योजना के दो आर्टिकल दिए जाएंगे, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, और कुरुक्षेत्र के भी दो आर्टिकल दिए जाएंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। यह मैं एक बात आप लोगों को से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, सजेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, जो योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल होते हैं आप उन्हें बहुत ही सामान्य रूप में न लें, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं। अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो मेंस के बहुत से क्वेश्चंस को ये आर्टिकल कवर करते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप इन आर्टिकल्स को पूरी गंभीरता से लें, इनसे आवश्यक पॉइंट्स नोट करें और चाहे तो छोटे छोटे आप टिप्पणियां या नोट्स भी बना लें, लेकिन इनकी अनदेखी ना करें। ये बहुत जरूरी है आपके लिए दोस्तों। और इसके साथ ही साथ हम लोग एक वीकली क्वेश्चंस भी आपको देते हैं जो मेंस के पैटर्न पर होता है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, वो प्रोवाइड उन्हें किया जाएगा। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के रूप में आज हम लोग भ्रष्टाचार पर कुछ बातें करेंगे, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना होगा टीकाकरण के बारे में, इंद्रधनुष योजना के बारे में। अभी आप रेडियो न्यूज में खासकर पा रहे होंगे कि सरकार के जो अलग अलग तरह के योजनाएं रही हैं, कार्यक्रम रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग आ रही है कि उनका क्या प्रभाव पड़ा। उसी के तहत टीकाकरण की बात कही गई थी जो इंद्रधनुष योजना के तहत है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, या यूं कह लीजिए कि इसके प्रति सतर्क भी करना चाहूंगा कि जैसे टीकाकरण है तो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है, सामान्य सी योजना है, इसको क्या गंभीरता के साथ लेना और गंभीरता के साथ इस पर तैयारी करना। मित्रों, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको अपनी इस अप्रोच को खत्म करना होगा। टीकाकरण भारत जैसे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जहां बाल मृत्यु दर इतनी ज्यादा हो स्वाभाविक है कि वहां यह योजना बहुत ज्यादा मायने रखती है। और देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपको इन सब योजनाओं को कार्य रूप में परिणित करना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार की कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, किस तरीके से उन्हें लागू किया जा रहा है, उनके क्या प्रोविजंस हैं, उसमें कितनी सफलता मिल रही है, अगर सफलता नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, क्या बाधाएं आ रही हैं और फिर उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। ये सारे तथ्य आपके जेहन में होने चाहिए और यदि इतने ही तथ्य हैं तो आप मान करके चलिए कि फिर उस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न क्यों न पूछा जाए, आप उसके उत्तर दे लेंगे। तो टीकाकरण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी खबर आपने सुनी होगी कि एक अभी विधेयक पारित हुआ है, भगोड़ा आर्थिक आपराधिक विधेयक। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है। देखिए, शब्द से ही बहुत जाहिर है, भगोड़ा, जो भाग गया हो, कहां भाग गया, अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में चला गया। अभी आप देख रहे हैं विजय माल्या का मामला है, नीरव मोदी का मामला है कि किस तरह से इन्होंने आर्थिक अपराध किए, मतलब बैंकों से पैसा लिया, उसे वापस नहीं किया और ये फिर विदेश में जाकर के शरण ले लेते हैं, उन देशों के भी नागरिक होते हैं, फिर उन्हें वापस लाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसी इस तरह के अपराधों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। तो इन्हें रोकने के लिए यह विधेयक पारित किया गया है और इसके तहत व्यवस्था यह की गई है कि मतलब एक तो आप याद रखिए कि 100 करोड़ रुपए से और उससे अधिक के अपराध इसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि अगर आप 70-80 करोड़ रुपए लेकर के विदेश भाग जाते हैं तो आपके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। 100 करोड़ या उससे यानी कि 1 अरब या उससे अधिक रुपए पर यह मामला लागू होगा और फिर इस कानून के तहत उन्हें वापस लाया जाएगा और वापस ला करके उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और देश में उनकी जो संपत्ति होगी उसे जब्त किया जा सकेगा। तो ये जो विधेयक है मित्रों, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसके ऊपर अभी देखिए लेख भी आएंगे और इसके प्रोविजंस क्या हैं, इसके क्या लूप होल्स हैं, इसके क्या स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, इस पर अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए और फिर जब लेख वगैरह आएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही। एक छोटी सी खबर है कि हमारी जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट ये है, मैं उन्हीं के शब्द तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहे तो दोहराने की स्थिति में नहीं हूं। कहने का उनका आशय यह था कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है हम चाहते हैं कि उसका सामान्य उपयोग हो, इस तरह की बात उन्होंने कही। हिंद प्रशांत क्षेत्र, आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है, ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। यही सिविल सर्विस की तैयारी करने का सर्वोत्तम तरीका भी होता है। तो देखिए, जो हिंद यहां कहा जा रहा है वो हिंदुस्तान नहीं है, यहां हिंद महासागर है, प्रशांत तो महासागर है ही, यानी कि आपके जो हिंद महासागर और जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है इसका सामान्य उपयोग होना चाहिए। तो असामान्य उपयोग, क्या असामान्य उपयोग हो रहा है, यह बात क्यों कही जा रही है? देखिए, उसके पीछे कोई ना कोई आधार होगा, कोई ना कोई कारण होगा कि यह बात कही गई है। तो कारण यह है, फिर आप जानते हैं कि चीन किस तरीके से ये पूरे के पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र पर अपना दबदबा, अपना प्रभुत्व कायम करने की लगातार कोशिश कर रहा है। मैरिटाइम सिल्क रोड, सामुद्रिक रेशम मार्ग तैयार कर रहा है, फिर आप मोतियों की लड़ी भी सुनते हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, उसमें लगातार लगा हुआ है। तो इन क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश कर, ये एक असामान्य स्थिति है। तो उसको भारत ने इशारे से कहा है कि भारत चाहता है कि नहीं, इस तरह का कोई दबदबा किसी एक देश का नहीं होना चाहिए, सभी के लिए यह क्षेत्र खुला होना चाहिए। तो ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और ये मान करके चलिए कि आने वाले कुछ सालों के लिए ये टॉपिक एक हॉट टॉपिक की तरह ही होगा, क्योंकि चीन को इस काम से रोक पाना आसान बात नहीं है। तो ये विवाद तो लगातार चलता रहेगा। खैर दोस्तों, तो अब हम लोग आते हैं आज के मुख्य विषय पर, वह है भ्रष्टाचार। इस विषय को मैंने क्यों चुना है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने न्यूज में सुना कि भ्रष्टाचार निवारण विधेयक 2013 को पारित कर दिया गया है और एक बहुत अच्छी बात है कि ध्वनि मत से पारित किया गया। ध्वनि मत से पारित करने का क्या मतलब होता है, यानी कि जितने भी सदस्य संसद में उपस्थित थे उन्होंने मेज थपथपाई तो मेज से ध्वनि निकली और वो पारित हो गया। इसे ही दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सर्वसम्मति से पारित किया गया, यानी कि इसके विरोध में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं था। दूसरी बात, ये एक तरह से जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है उनके भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और इसमें दोनों ही बातों को शामिल किया गया है। ये नहीं कि केवल रिश्वत लेने वाला ही अपराधी है, अफसर ही अपराधी है, बल्कि जो रिश्वत देता है, दे रहा है, वह भी अपराधी है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मित्रों, अभी उन चीजों, उन बातों का खुलासा नहीं हो पाया है, मीडिया में आएगा, अखबारों में आएगा, उस समय हम लोग विस्तार के साथ इस पर और बातें करेंगे। अभी जो बातें भी करेंगे वो थोड़ी सी आधी अधूरी होंगी, बहुत ज्यादा समीक्षात्मक भी नहीं होंगी। मैं आपको अब इस ये टॉपिक के महत्व के बारे में बताना चाहूंगा। मान करके चलिए कि यह टॉपिक एक ऐसा एवरग्रीन टॉपिक है, सतत हरित टॉपिक है, हर साल किसी भी साल का आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए आपको यह टॉपिक मिलेगा। वैसे तो सामान्य तौर पर इसे हम सेकेंड जनरल स्टडीज मेंस के सेकेंड पेपर का टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि सेकेंड पेपर में आप देखेंगे कि आप सिविल सर्वेंट्स वगैरह के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये सब के सब कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार निवारण सिस्टम के तहत RTI की बात करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, तो ये सब लाए ही इसीलिए गए हैं। तो वो सेकेंड पेपर में भी ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं, तो सेकेंड पेपर में भी ये पूछा जाता है। लेकिन जो सबसे जो महत्वपूर्ण पेपर है इसका, वह है आपका जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर, जो आपके एथिक्स एप्टीट्यूड इंटीग्रिटी से रिलेटेड पेपर है। आप उठा करके देखिए, उसमें दो तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार पर पूछे गए हैं, और दूसरे जो प्रश्न होते हैं, आप देखिए कि सीधे सीधे भ्रष्टाचार पर तो नहीं होते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो भ्रष्टाचार से ही जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पक्षपात पर प्रश्न पूछा गया, भाई भतीजावाद पर प्रश्न पूछा गया, तो कोई अफसर अगर पक्षपात कर रहा है, भाई भतीजावाद दिखा रहा है, तो भ्रष्टाचार ही कर रहा है ना। लेकिन यह फर्क केवल इतना है कि वहां भ्रष्टाचार न होकर के पक्षपात पूछ लिया गया है। तो भ्रष्टाचार पर हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे सीधे भ्रष्टाचार पर। उदाहरण के तौर पर मैं यहां आपके सामने दो प्रश्न पेश करना चाहूंगा। तो एक है जो लेटेस्ट 2017 का है जो पूछा गया है, और एक फिर मैं उसे ठीक पहले 2016 का प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं। देखिए कि क्या प्रश्न पूछा गया। आपको टॉपिक के साथ साथ यह भी जानना चाहिए कि उस टॉपिक पर तैयारी कैसे करनी, उसे हैंडल कैसे करना। जब तक आप इसको नहीं पकड़ेंगे तब तक बहुत मुश्किल होगा सिविल सर्विस की तैयारी करना। देखिए इसमें उन्होंने कहा है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनों वाला बनाना है तो उसमें समाज के तीन प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं, वे हैं पिता, माता एवं शिक्षक। एपीजे अब्दुल कलाम, विश्लेषण कीजिए 150 शब्द। मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास मेल आते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। इफ ए कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम ए नेशन ऑफ अ ब्यूटिफुल माइंड, आई स्ट्रांगली फील देयर आर थ्री की सोसाइटल मेंबर्स हु कैन मेक ए डिफरेंस, दे आर द फादर, द मदर एंड द टीचर। एपीजे अब्दुल कलाम, एनालाइज 150 वर्ड्स। ये भ्रष्टाचार पर एक पूछा गया एक प्रश्न है। 2016 में जो प्रश्न पूछा गया है, देखिए भ्रष्टाचार पर सीधे सीधे जो शब्द भ्रष्टाचार का आया है वो है दोस्तों, भ्रष्टाचार सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासनिक अदक्षता एवं राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। कौटिल्य के विचारों की विवेचना कीजिए। पहले अब्दुल कलाम आजाद साहब के विचारों की बात थी और यहां कौटिल्य के विचारों की बात है। यह भी 150 शब्दों में लिखना है, 10 नंबर का यह भी है। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं, करप्शन कॉजेज मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, डिस्कस कौटिल्याज व्यू 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। अब आप देखें कि इसमें भ्रष्टाचार के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, कि विजिलेंस के बारे में बात हो रहा है, हो रही कि विजिलेंस कमीशन क्या कर रहा है, सीबीआई क्या कर, इस तरह की कोई बात नहीं, या प्रवर्तन निदेशालय क्या कर रहा है, क्योंकि ये फोर्थ पेपर का क्वेश्चन है ना। इसमें आपसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है और इसके माध्यम से ये देखा जाएगा कि भ्रष्टाचार का जो व्यवहारिक पक्ष है उसके बारे में आपकी समझ कितनी है, आपकी पकड़ कितनी है, और वो जो आपकी व्यवहारिक समझ और आपकी जो पकड़ होगी उसी से आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो रिफ्लेक्ट होगी। तो मित्रों, ये जो भ्रष्टाचार वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। मुख्य विषय के बारे में मित्रों इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल के तहत कुछ प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों, कि कुछ स्टूडेंट्स ने जानना चाहा है कि क्या हम जब ऐसे लिखते हैं या आंसर राइटिंग करते हैं तो कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए कि अब ऐसा नहीं कि आप प्रधानमंत्री की जगह प्राइम मिनिस्टर लिख रहे हैं, है ना। प्रधानमंत्री वेल नोन है तो आपको प्रधानमंत्री ही लिखना चाहिए। कर सकते हैं, उसको लेकर के कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप कितना कर रहे हैं और कहां कर रहे हैं। तो अगर आप फ्लो में कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसके लिए अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड नहीं है, तो ठीक है आप कर लीजिए। लेकिन जो अगर हिंदी के बहुत कॉमन वर्ड्स हैं या जिस भी रीजनल लैंग्वेज में आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसके लिए बहुत ही प्रचलित शब्द हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन इसको दिमाग पर तनाव का कारण न बनाएं। मित्रों बहुत स्टूडेंट्स ने कई बहुत लंबे समय से सिलेबस के बारे में जानना चाहा है कि सर हमें सिलेबस के बारे में बताइए, सिलेबस की डिटेल्स बताइए। तो मैं आप लोगों को फिर से सूचित करना चाहूंगा कि सिलेबस के बारे में यूट्यूब में मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम डाला हुआ है और उसमें सिलेबस का खुलासा किया हुआ है। आप AFEIS में जाकर के मेरे नाम से जब यूट्यूब देखेंगे तो इस टॉपिक पर आपको वहां जानने को मिल जाएगा, मैंने डिटेल में बताया है और वो आपकी जरूरत को पूरा भी कर देगा। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से चार मित्रों के नाम हैं हसन अब्बास सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, दुर्गेश शुक्ल, मनोज जोशी और पीयूष चौहान। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। दो दिनों के लिए इजाजत भी चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।